તારીખ 28/3/1991 શ્રી સમયસાર ગાથા 144 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 4
का पता नहीं है, जिसको ये निर्णय नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं या पियोन हूं, मैं घर में धनी हूं या नौकर हूं, जिसको निर्णय नहीं है उसका कर्तव्य कैसे पता चले कि उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे मेरा स्वरूप मैं कौन हूँ, निश्चय से मेरा स्वरूप क्या है, इसका निश्चय बिना हमारा कर्तव्य और हमारा अकर्तव्य के यथार्थ कोई सीमा मर्यादा या पॉलिटिक्स, इसका निश्चय नहीं हो सकता। तो हमारा आत्मकल्याण हमें करना है, यही हमारा कर्तव्य है। तो हम कौन है वो हम नहीं जानेंगे और हमारा हित कैसे करें, ये बन सकता नहीं है। इसलिए सभी का ये अनुभव बोलता है कि सबसे पहले स्वरूप का निश्चय होना चाहिए, अपने पद का निश्चय होना चाहिए। ऐसे यहाँ भी आचार्य महाराज ने ये बात कही कि प्रथम श्रुत ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करना, कैसे करना, इस विषय में अपनी सुबह से चर्चा चल रही थी। तो गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से हमने ये देखा कि यहाँ पर गुरुदेव ये कहते हैं कि राग का कुछ अंश में अभाव करके ही निश्चय होता है। तो यहाँ यह समस्या अवश्य खड़ी होती है कि जब सम्यक्त्व नहीं हुआ, वीतराग का उत्पन्न नहीं हुई है, वहाँ राग का अभाव कैसे हो सकता है। क्या सिद्ध गुरुदेव के हैं, दोबारा देखते हैं, यहाँ से ही चर्चा करें, गुरुदेव के शब्द को पता करें। यह निर्णय में राग का अंश अभाव होकर निर्णय होता है। तो जो बात हम समझी है अभी तक, उसमें तो ऐसे समझे हैं कि जब सम्यक दर्शन होता है तभी राग का अभाव होता है, अनंतानंद जी के राग का अभाव सम्यक दर्शन होने पर होता है, पर यहाँ जो बात चल रही है ये सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका की बात चल रही है। तो जिस निर्णय के फल में आगे जाकर के विकल्प छूट जाएंगे और निर्विकल्प कारणों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी, तो उस स्टेज में सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में राग का अंश अभाव होकर निर्णय होता है, ये बात क्या है, ये प्रश्न यहाँ संबंधित है। तो राग का अंश अभाव मैंने क्या, कि राग का जो आधार है वो आधार नहीं, राग का आधार के कारण से जो राग की मुख्यता है ऐसी राग की मुख्यता नहीं मिली। निर्णय के काल में क्या हुआ, इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया कि राग का अंश अभाव होकर के निर्णय होता है, लेकिन बुद्धिपूर्वक के सर्व विकल्प छूट जाता है तो बात मैंने विकल्पात्मक दशा में होता है। तो अभाव का उतना ही अर्थ निकलता है कि राग की सन्मुखता नहीं है, ज्ञान में स्वयं की सन्मुखता है, इसलिए राग का अभाव कहा गया है। राग का आधार भी नहीं, अवलंबन भी नहीं, और राग की सन्मुखता भी नहीं, राग की मुख्यता भी नहीं। इस परिस्थिति में जो निर्णय हुआ उसी को निर्णय कहते हैं, वो कैसे हो रहे। अब जो आगे के प्रश्न है वो उस प्रकार का है, तो वो कैसे हो गए, ठीक है राग की मुख्यता छूट जाए बात में कोई विरोध करने का कारण नहीं है, खत्म गया वो। आदमी वहां बैठता नहीं है, राग की मुख्यता नहीं रहती, राग में अहंभाव का बजाय रहते ज्ञान उन्होंने ये चर्चा की आत्मा कैसे पहचाना जाए, आत्मा का निश्चय कैसे होवे। उसमें ये बात चलाई कि ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभावी आत्मा की पहचान होती है। ज्ञान लक्षण से जब ज्ञान स्वभावी आत्मा की पहचान होती है तो लक्ष्य और लक्षण भिन्न है या अभिन्न है। भिन्न लक्षण से भिन्न तत्व की आप पहचान कराते हो या अभिन्न लक्षण से अभिन्न लक्ष्य की पहचान कराते हो। ऐसा खुद नहीं प्रश्नाचार्य महाराज ने उठाया तो कहते हैं कि ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, लक्षण से भिन्न लक्ष्य नहीं है। ऐसा उत्तर दिया स्वयं ने, प्रश्न भी स्वयं ने उठाया कि कौन सा ऐसा लक्ष्य है कि जो ज्ञान की प्रसिद्धि के द्वारा उससे भिन्न प्रसिद्ध होता है। तो ना दे दिया, ऐसा तो नहीं है, ज्ञान से भिन्न नहीं, लक्ष्य ज्ञान से भिन्न नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्य पने से संबंधता है। देखिए कल की चर्चा का एक बहुत सुंदर उत्तर इसका आया है कि ज्ञान और आत्मा में ज्ञान पर्याय है और लक्ष्य द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य पने से दोनों अभेद है। क्या कहा आचार्य महाराज ने, द्रव्यार्थिक में से हम देखें तो द्रव्य पने से दोनों अभेद है। हमें पर्याय को पर्याय दृष्टि से यहाँ पर नहीं देखना है, ज्ञान की पर्याय को हमें द्रव्य पने से देखना है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, जो लक्षण है ज्ञान की अवस्था में इससे भिन्न लक्ष्य नहीं है। क्यों कि स्वभाव की अपेक्षा है, द्रव्यपने की अपेक्षा है, ज्ञान और आत्मा में अभेदता है, वहां स्वभाव है। जैसे गुरुदेव ने कहा अपने प्रवचन में कि जैसा पर्याय में स्वभाव व्यक्त है वैसा ही अव्यक्त, ऐसा ही है, अखंड है, दोनों में अखंड है, दोनों में दो भेद नहीं है, दो खंड नहीं है, इसलिए वहां ही स्वभाव है। जो यहाँ से पाया जाता है ज्ञान में से ज्ञान स्वभाव पाया जाता है। पंचाध्याय में और दूसरे दूसरे ग्रंथ में तो खास ये बात ही जैसे विलास में पंचाध्याय में कि गुण को कहाँ से पहचाने, क्योंकि गुण तो सामर्थ्य रूप तत्व है, उनको कहाँ से पहचाने, कि गुण के कार्य से गुण को गुण को पहचाने। जैसे ज्ञान में जानने की शक्ति है, ज्ञान गुण में जिसमें जानने का सामर्थ्य है उसे हम ज्ञान गुण कहेंगे। लेकिन सभी गुण निर्विकल्प है, अरुचि है, तो ये ज्ञान गुण है और दूसरा सुख गुण है, दो एक नहीं है, एक गुण दूसरा गुण नहीं है, कहाँ से पता लगेगा, कहाँ से पहचाना जाएगा। इनके परिणाम से जानने का कार्य यहाँ से होता है, उपयोग होता है, ये ज्ञान गुण का कार्य है, यहाँ से ज्ञान गुण का निश्चय होता है। पर्याय से गुण का मैंने स्वभाव का निश्चय होता है। क्यों, क्योंकि पर्याय में स्वभाव है, इसलिए अगर पर्याय में स्वभाव नहीं होता तो इस गुण का निश्चय भी नहीं हो सकता। तो इसलिए पंचाध्याय में भी बहुत छानबीन से ये बात चली है, श्री विराट में भी विवाद ये बात सही है। भीष्म जी ने बहुत अच्छी तरह अग्नि पना पहचाना जाता है, जलती हुई अग्नि से इसका उष्ण पना स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, ये क्या इसके जल जलन से नहीं समझ सकते, नहीं पहचान सकते, नहीं ज्ञान कर सकते? कहाँ से करेंगे बाबा? कौन सा दूसरा उपाय है? दूसरा कोई उपाय यही एकमात्र चैनल है स्वभाव को ग्रहण करने की। तो यहां कहते हैं निर्भरा दर्शन की पगडंडी शायद नहीं है, ऐसा लिखना मंगलगंडी के पास चलता जो है कि ज्ञान से भिन्न नहीं है। लॉजिक से बात करते हैं आचार्य कि ज्ञान से भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ज्ञान और आत्मा में द्रव्य पने से अभेद है, द्रव्य के अंगभूत होने से, ज्ञान वस्तुभूत होने से द्रव्य पने से उसकी अभेदता है। जब द्रव्य पने से अभेदता है तब फिर आप लक्षण और लक्ष्य का जो विभाग किस लिए करते हो, ये भी प्रश्न खुद ने उठाया, आचार्य महाराज ने प्रश्न ने उठाया। एक तो इस प्रतिपादन की भाषा में लक्ष्य और लक्षण में द्रव्य पर्याय का भेद समझ में आया, भाषा जब भेद समझ में आ गया है तो बातान कर देने माता करने तो उधर पीछे बैठा या कमरे के बाहर है। ज्ञान से जब ये परिस्थिति है कि भिन्नता भाषा में मालूम पड़ती है तो भिन्नता है कि नहीं है, के द्रव्यार्थिक में से देखने को भिन्नता नहीं है, पर्यायार्थिक में से भिन्नता द्रव्य पर्याय से मालूम पड़ती है, लेकिन हमें यहाँ इस आंख को बंद करके सर्वथा बंद करके गाथा 114 प्रवचन था द्रव्यार्थिक में से देखना है कि ये द्रव्य पने से अभेद है। तो द्रव्य पने से जब अभेद है तो फिर लक्षण और लक्ष्य का विभाग ऐसा दो विभाग क्यों लगता है, या बोलते हो ऐसा लगता है कि कुछ दो विभाग है, तो हाँ कुछ ऐसा तुम्हें दिख रहा है, ऐसा जो कुछ है इसकी एक वजह है। क्या वजह है? कि लक्षण प्रसिद्ध है और लक्ष्य को हमें प्रसिद्ध करवाना है। प्रसिद्ध ही ज्ञानम, ज्ञान में प्रसिद्ध पना है, प्रसिद्धत्व है, ज्ञान की अवस्था में प्रसिद्ध पना है, प्रसिद्धत्व है। और जो स्वभाव जिसको प्रसिद्ध किया जाएगा, जिसको प्रसिद्ध किया जाएगा ज्ञान के माध्यम से, उसको प्रसाद्यमान कहते हैं शास्त्र के की परिभाषा में सुख उसको प्रसिद्ध करने के लिए, प्रसाद्यमान को प्रसिद्ध करने के लिए हम किस ढंग से बात करते हैं, उतना उतनी वजह है। फिर भी ज्ञान प्रसिद्ध है, और ज्ञान जो प्रसिद्ध है उसकी क्या वजह है? ये को जानता है इसलिए ज्ञान प्रसिद्ध है, सो बात नहीं है। ज्ञान प्रसिद्ध है क्योंकि ज्ञान मात्र को स्वयं संवेदन से सिद्ध बना है। ज्ञान में ज्ञा का ज्ञान नहीं लिया, ज्ञान मात्र को ज्ञान मात्र को स्वयं संवेदन से सिद्ध बना है, उसकी महावेदन है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान वेदन से या ज्ञान में ज्ञान के वेदन भूत लक्षण से अपने स्वयं का अस्तित्व को ग्रहण करो। अस्तित्व में स्वभाव इंक्लूड हो जाता है, अस्तित्व में पूरा स्वभाव आ जाता है, अस्तित्व से बाहर कोई चीज रहती नहीं है। तो मैं पना करता है, अस्तित्व भाव क्या करता है? मैं हूं यही अस्तित्व का ध्वनि है। तो ज्ञान मात्र में हूं ऐसे इसमें होता है। ज्ञान मात्र में हूं ये चलता ज्ञान, जो चालू ज्ञान है, यहां से ये बात वेदन के अनुभव पद्धति से हुई। क्या अंतर है ये पद्धति में? कि विचार पद्धति में ऐसा विकल्प हो सकता है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, लेकिन ज्ञान स्वभाव उसमें परोक्ष रहता है। विचार में वस्तु परोक्ष है और प्रयोग में वस्तु प्रत्यक्ष है, उतना बड़ा अंतर है। तो ये वेदन भूत लक्षण है, वेदन को पकड़ करके जब अस्तित्व का ग्रहण किया जाता है कि ऐसा मैं हूं, तो ये ज्ञान के आधार से जो अस्तित्व का ग्रहण हुआ इसी को ही स्वरूप निश्चय कहते हैं। उसमें पूरा पूरा स्वभाव भाव भाषित होने से उसको स्वभाव का भाव भाषण कहते हैं, उसको स्वरूप का निश्चय कहते हैं। श्रीमद जी ने उसको अस्तित्व ग्रहण कहा है, कि अस्तित्व ग्रहण की प्रक्रिया है, ऐसा कहा है। लिखा है उन्होंने कि एक बार यदि अस्तित्व का ग्रहण हो जाए तो सम्यक दर्शन अवश्य अवश्य होता ही है, ऐसा करके लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार भाव भाषण हो जाए तो इसी कारण से सम्यक दर्शन को आना ही पड़ता है, आए बिना रहता। उन्होंने तो आगे जाकर तो बहुत लिखा है, काफी गहराई थी श्रीमद जी के ज्ञान में। तो उन्होंने ये बात लिखते लिखते वहां तक ले लिया कि अगर किसी जीव को स्वानुभूति पैदा होती है और पुरुषार्थ बदल जाने से, रुचि बदल जाने से, शुभ की रुचि हो जाने से, अगर ये चूत हो जाता है समय अवस्था पर, फिर से वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तो ये फिर सन्यत्व में आ जाएगा, आए बिना रहेगा नहीं। इसका कारण ये अस्तित्व ग्रहण हो चुका है नहीं है। अस्तित्व ग्रहण में कितनी ताकत है कि अगर सम्यक दर्शन से कोई गिर गया पर मिथ्या दृष्टि हो गया तो फिर से वो सम्यक तो पाएगा अवश्य, उसका कारण ये अस्तित्व ग्रहण हुआ है वो है, दूसरा कोई कारण नहीं है, ऐसा करके लिखा है। मैंने बहुत गहराई से ये बात इसलिए लिखी कि इस भाव भाषण के काल में, अस्तित्व ग्रहण के काल में अनन्य रुचि, स्वभाव की अनन्य रुचि पैदा होती है, जो अपने परिणमन को भेद रूप, विकल्प रूप, अन्य रूप रहने नहीं देगी, अभेद हो जाएगा परिणमन, तादात्म्य हो जाएगा, तदरूप हो जाएगा। ऐसी जो रुचि है उस काल में इस आत्मा को इससे दो बड़े उदाहरण ये हैं कि संस्कारी जीव को बिना निमित्त ज्ञान के, निमित्त बिना ही सम्यक दर्शन हो जाते हैं। ये खुद श्रीमद् राजचंद्र जी हैं, और इधर सम्यक दर्शन हुआ है। तो ये संस्कार ऐसी चीज है कि कभी निर्मल नहीं होते, निर्मल निर्मल नहीं होते, इसलिए सम्यक दर्शन से च्युत हो जाता है, लेकिन संस्कार से च्युत नहीं हो सकता, उसको दूसरे भाव में अवश्य अवश्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई जाती है। इतना महत्व ये रखता है, इसलिए आचार्य महाराज ने इस पर इतनी लंबी चर्चा की, क्योंकि सारे समयसार ग्रंथ में किसी गाथा की टीका में इस मुद्दे को खोला नहीं। इतनी बात जरूर आई कि तावत प्रथमतः कृतज्ञान अवस्तंभन ज्ञान स्वभाव आत्मान निश्चित्य निश्चित्य, बस उतना ही कह दिया, ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके इससे आगे कोई बात नहीं चली। तो खुद को विकल्प रहा कि ये बात कहने की रह गई है, हम परिशिष्ट में उसको खोल करके बताएंगे। तो यहाँ ये बात कही कि प्रसिद्धत्व और प्रसाद्यमानत्व के कारण लक्षण और लक्ष्य का विभाग किया गया है, फिर भी ज्ञान तो प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्ञान मात्र की स्वसंवेदन से सिद्धपना है, अर्थात सर्व प्राणियों को ज्ञान स्वसंवेदन रूप अनुभव में आता है। सर्व प्राणियों ज्ञान अगर अपना ज्ञान वेदन का त्याग कर दे तो अपना स्वरूप का नाश हो जाता है, इसलिए ऐसा कभी होता नहीं। चाहे हम इसको ग्रहण कर सकें लक्षण से या अनंत काल नहीं ग्रहण करें, लेकिन इससे सोना चाहे लाख करोड़ वर्ष मिट्टी में पड़ा रहे इसकी कीमत जाती नहीं है, हीरा चाहे लाख करोड़ वर्ष खानी में पड़ा रहे इसकी कीमत जाने वाली नहीं। इस तरह से जिसको इस हद तक की पात्रता होती है, दर्शन वो काफी मात्रा में मंद होता है, उसी जीव को जब अंतरंग में ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभावी आत्मा की खोज चलती है, तो तो ये खोज कैसे चलती है कि जिससे ये निश्चय होता है या भाव वासना होता है, ये एक प्रश्न यहाँ अपेक्षित है। तो किस तरह खोज चलती है? खोज करना अच्छी बात है, करना चाहिए, मान लिया, लेकिन कैसे करें ये प्रश्न तो अवश्य होता है। तो उसमें ऐसा है कि हमको जब ये समझ में आया सार्वक्षणिक ज्ञान में, विचार ज्ञान में, कि ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय होगा, दूसरी कोई पद्धति नहीं है, तो हमें विचार में नहीं रह करके हमारा जो ज्ञान चालू है, ज्ञान का प्रयास निरंतर चालू रहता है, एक समय भी इसमें ब्रेक नहीं पड़ता, इसलिए ये साधन निरंतर उपलब्ध है। हमें उसमें क्या अनुभव होता है, हमारे अनुभव को हमें देखना है। फिर जब हमें पता चल गया कि हमको यहाँ खोज करनी है, तो हमें और जगह खोज नहीं करनी है, तो हमें जहां तक इसका पता नहीं लगे वहां तक वहां हमको खोज चालू रखनी चाहिए। तो बात तो यहाँ रही है अनुभव प्रगति की। तो ज्ञान में हमें ज्ञान का अनुभव सभी प्रकार के दूसरे विक्षेप एक ही चिंता है कि मुझे मेरा स्वभाव का वियोग नहीं होना, मेरा स्वभाव मैंने मेरा परमात्म तत्व। एक लड़की को ससुराल में भेजते वक्त उसके माँ बाप के आंख में से आंसू निकल जाते हैं, रड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, भले ही गांव में दिया ही किसी के बाद नहीं दिए, फिर भी भेजते वक्त क्या हालत होती है। तो अपने परमात्मा का वियोग कभी हुआ है क्या? हमको हमारा परमात्मा का वियोग का दुख कभी नहीं हुआ। तो ज्ञानी श्री की एक कहते हैं, किसी में प्रेम हो तो दुख हुए बिना, वियोग का दुख हुए बिना रहे नहीं। मतलब ये है कि तुझे प्रेम है नहीं कि दुख शांत से होगा। तो जो बात वेदन से और वेदना से सीखती है उसमें सच्चापन होता है। जहां तक वेदना नहीं होती वहां तक प्रकृति नहीं। समय दर्शन इस वेदना में से पैदा होता है कि हमारी परमात्मा योग है कि नहीं। कभी ज्ञानी की ऐसी स्थिति रही हमेशा तो बहुत वेदना में आए हैं और फिर बाद में ही उसने भगवान का भेदा हुआ है, इससे पहले भगवान की भेद नहीं थी। ये परमात्मा के मामूली तत्व नहीं है। तीन लोग का नाश में सर्वोत्कृष्ट कारण तत्व है। तो इसके लिए अगर हमें कोई दरकार है तो कहाँ तक है, कितने हद तक है, ये एक सवाल है। जैसे हमें हीरा 25 लाख का है तो उसमें 25,000 में मिलने वाला ये बेकार आता है। जिसकी जितनी कीमत होती है उसकी इतनी कीमत आनी ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति में बचपन में और बढ़ जाता है, जब वेदना आती है तो दर्शन मोह और जल जाता है। ऐसे दर्शन मोह के टूटने के बहुत से प्रकार के पूर्व प्रक्रिया में परिस्थिति बन जाती है और फिर बाधाएं जो है कि जूझता है तो मिलता है। खोजी जीरे आदि मरे मना सदा तुम्हें क्या कहा। तो शास्त्र पढ़ करके बाद विवाद में जाएगा मर जाएगा तो खोजे होगा वो जिंदा। तो ऐसे भीतर में जिसको खोज चलती है तो कैसे करें। तो अपने चलते ज्ञान में जब ये हमको अनुभव हो रहा है कि ये ज्ञान की धारा सतत चलती है, सतत चलती है उतना ही नहीं, बहुत से प्रकारों के बीच में भी ये चालू रहती है। कसाई क्या चीज है कि ये ज्ञान प्राण का घातक है। ज्ञान और आनंद शांति को घात करने वाला है, अशांति को पैदा करता है। फिर भी ये ज्ञान ऐसा है शांति की हानि नहीं है, ज्ञान की हानि होती है लेकिन नाश नहीं होता है, शांति का नाश हो जाता है अशांति अभी होता है। चालू रहता है ज्ञान मात्र रूप है। इस अवलोकन पद्धति से कोई अवलोकन होता है तो अवलोकन करने वाला उपयोग हो, साथ में चलने वाला राग का आधार होने का पता है। जो अनादि से हमारी वैचारिक पद्धति में राग के अवलंबन से राग की मुक्तता से राग में हम पना रख करके जो भी विचार किया है वहां तक हमारा निर्णय सही नहीं रहा, क्योंकि हमारा निर्णय का आधार कौन है? आधार बिंदु राग है। जहां तक वहां तक आत्मा का निश्चय नहीं हो सकता, ये तो दुश्मन है हमारा, राग तो हमारा दुश्मन है। अरे जिसने अरे को हमारा नाश किया उसको अरिहंत कहते हैं, तो इसके इसके आधार से हमारा शरीर क्या, तो इसका आधार छोड़ करके ज्ञान मात्र के अवलंबन से फिर इस तरह प्रमुख होकर के ज्ञान के आधार से ज्ञान स्वभाव का निश्चय होता है, तब सही निश्चय होता है, तब सही भावना होता है। पर तब ये समस्या नहीं रहती कि हम पुरुषार्थ कैसे करें। जहां तक राग के आधार से निश्चय कर लिया विकारिक भूमिका में इसी प्रकार का, वहां तक तो ये समस्या रहेगी। तो संवाद के समझ में आ गई, लेकिन पुरुषार्थ चलता है क्या करें कैसे करें। लेकिन यहाँ तो हमारा अनंत सामर्थ्य जो है इसका भाव वास्तविक हुआ है, जैसा सामर्थ्य है ऐसा जितना है उतना है, तो प्रसाद शक्ति को उठाना नहीं पड़ता है, ये उठे बिना रहता चैतन्य युवती तुलना पैदा होती है। जो हमने कल दोस्तों व्यक्त दुर्गय के रचना व्रत में देखा, एक चैतन्य युवति पूर्णा हो जाती है तो जो मुद्दा है भाव भाषण के वास्ते नहीं हुआ उसको समझने के लिए, तो एक को पुरुषार्थ चालू हो गया कैसे करना वो समस्या बता, दूसरा तो हमारे अनंत महिमा की स्वभाव की महिमा इतनी उम्र के आई थी कि अब महिमा कैसे करना वो समस्या नहीं रही। और जिस ज्ञान में इस स्वभाव का भाव दर्शन हुआ उस ज्ञान में पुरुषार्थ साधने होने से उतना ज्ञान बल हुआ कि राग को भी स्वभाव का भजन करना पड़ा, वो भी ऐसा विकल्प होने लगा कि मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैं पूर्ण हूँ मैं ध्रुव हूँ मैं योग हूँ मैं शुद्ध हूँ। क्या है ऐसा तो राग को है तो दुश्मन विरोधी पक्ष में रहने वाला विरोध भी करता है, लेकिन कमजोर होता है तो वो भी प्रशंसा करने लगता है, तो ये भी राग में उसी करने लगा आत्मा की प्रशंसा करने लगा, फिर भी उसकी आयु में भी लंबी रही, ये तो मरने वाला है कमजोर तो हुआ। अभी वो क्षीण होता जाता है, वेद ज्ञान की प्रक्रिया विचार नहीं वेद ज्ञान का, मैं विकल्प नहीं मैं राग नहीं मैं जायक नहीं ऐसा विकल्प नहीं, लेकिन जो लक्ष्य में आया है उसको ग्रहण करके, क्या ग्रहण करके अपने रूप में अहम रूप में ग्रहण करके जो भी कविता राग है चाहे वो स्वरूप संबंधित हो उसका निषेध आता है, और उसका निषेध आता है वही विज्ञान की प्रक्रिया है। ऐसे वेद ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो उसकी मात्रा जो है, उसकी जो गति है वो तेज होती है, उसमें तेजी आती है और एक ऐसे प्रकार में वो अपने निर्विकल स्वरूप से महिमा में ग्रहण जो हुआ वो इतना जोर से होता है कि विकल की उत्पत्ति एक क्षण पर बंद हो जाती है। ये अनादि की जो राज की श्रृंखला थी वो टूट गई, टूट गई बस एक दफे टूट गई, सारी श्रृंखला टूट गई। सांकर देखा होता है सारे सभी नकोड़े को तोड़ना नहीं पड़ता, एक कमजोर है उसको तोड़ दो बंधन टूट जाएगा। ये अनादि का है समानता बंधन की तो तोड़ने की ये प्रक्रिया है और दूसरे दूसरे रूप उनके लक्षण हैं कि हमें भाव शासन हो तो किस किस लक्षण से ये समझ में आ सके कि ये भाव शासन हुआ है या अनन्य हुआ है। ये लोग आपसे इतनी मोटी है स्वरूप का अपूर्व मनना, स्वरूप की अपूर्व स्वभाव की और स्वरूप का स्वसम्मुखी प्रकार, ये तो बात ऐसी है कि किसी में नहीं रहती। फिर वैचारिक भूमिका में जो निर्णय है वो छठ पठन का रहता है और भाव भाषण में जो निर्णय आता है उसमें अपना मेरा स्वरूप है उस रूप में वो भाषित होता है। कैसे होता है? अपना रूप है, मेरा स्वरूप है, ऐसा अपने रूप में स्वयं के रूप में स्वभाव का भावनात्म होता है। ये जीवन इसका एक भिन्न लक्षण है। दूसरा कि उपयोग हुआ जब हमारे स्वरूप को हमने पहचाना तो ये उपयोग की स्थिति में हुआ, इस उपयोग का लक्ष्य होगा, ये परिणति बन जाएगी जो लक्ष्य रहती है और ये हमें चालू रहती है, इसको परिणति कहते हैं। परिणति के विषय में हमारे यहाँ भी बहुत कम चर्चाएं चलती है, जैसे कि हम मनुष्य हैं ये हमारी आर्थिक परिणति है। हमें कभी स्मरण नहीं कर सुना पड़ता, हमें कभी विस्मृति भी नहीं होती, कभी शंका भी नहीं होती कि हम कितने भोजन मनुष्य है, सब मुझे नहीं होता, एक परिणति रहती है। दूसरी हमारा निश्चय होता है कि हम मनुष्य है, ऐसा जब हमारा निश्चय है तो हमारी ऐसी परिणति चलेगी। जब हम आत्मा है ज्ञान कराए ऐसा निश्चय हुआ तो हमारी परिणति ऐसी चलेगी। तो परिणति में बल बहुत होता है और बहुत बल होता है तभी परिणति रहती है, बल नहीं होता तो परिणति नहीं रहती। अगर हमको कोई भुलाना चाहे तब फड़ा फड़ा नहीं है तो क्या हमको कोई भुला सकता है? ये बात ही नहीं बन सकती, दृढ़ता करने की आवश्यकता भी नहीं है, इतनी परिणति दृढ़ होती है। इस परिणति के व्यवहार ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तत्व को मर्यादा में आना होता है, प्रसन्नता में आना होता है और अनुभव होता है। इसका जो विवरण है तो आचार्य महाराज आगे जा करके करेंगे, उसकी व्याख्या में आचार्य महाराज के शब्द को स्पष्ट करके इसी विषय के मुख्य समर्थन करेंगे। ज्ञान मिलनी के समय के पर्याय में विशेष को उपयोगी और सामान्य अंत को लक्ष्य कह सकते हैं क्या खुलासा कीजिए। ऐसा नहीं है ज्ञान की एक समय के पर्याय में दो अंश नहीं है, दो करनी है। पर्याय के समान के लिए होती है लघु उद्योग को दो भाव ना भी दो पर्याय में भी दो अंश है लेकिन दो भाव है जो अलग अलग रूप से अपना का परिणाम करता है। ये दूसरी बात है लघ उपयोग में दूसरी बात है और सामान्य वैशिष्ट विज्ञान में दूसरी बात है, बिल्कुल दूसरी बात है। ये लघ उपयोग वाली बात है कि सारा प्रकरण ही अलग है, भावना उपयोग और लघ ऐसी साइकिल चलती है परिणाम में। जिस चीज की बहुत भावना होती है उसका भावना उपयोग होता है उसकी परिणति बन जाती है उसको लक्ष्य कहते हैं। बिल्कुल अलग बात है। यहाँ जो ज्ञान का सामान्य पर्याय जो भाव है पहले उसमें भावना उपयोग के साथ कोई संबंध नहीं है। द्वितीय व्यापार होता है ये सामान्य ज्ञान कोई व्यापार ज्ञान बात लगे बात बिल्कुल ज्ञान सामान्य को बड़े सामान्य को कहा तो बड़े सामान्य को परिपूर्ण पर्याय के समान है परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव के समान है शुद्ध पर्याय स्वभाव के समान है। कहा भी जाता है कि ठीक से समान सदापर मेरे ठीक है लेकिन वो कहा माल भाई ने भी कहा है कि मैं तो जो सीखा ठीक है अतः शुद्ध ज्ञान जो आंशिक सामान्य ज्ञान को विकारी द्रव्य के सापृत्य कैसे कहा सापृत्य मैंने इतना पूर्ण नहीं लेकिन उसका भाव क्वालिटी सापृत्य है क्वांटिटी नहीं कह रहे हैं क्वालिटी सब रखते हैं। क्यों ये सामान्य है इसका जो स्वरूप है वैसा ही स्वभाव का स्वरूप है सदृश स्वरूप है इसलिए हमें कैसा स्वभाव है इसके लिए तक विपर्क अनुमान करना नहीं पड़ता। पहचान सही पहचान होती है तो जैसा ये सामान्य है ऐसा ही सामान्य प्रभाव है फिर उसको पैमाने में अनंत ज्ञान पता चल जाता है कि इतना सब ज्ञान में तादाद है कि उसका प्रमाण भी फिर आ जाता है सब ज्ञान में। लेकिन क्वालिटी की पहचान नहीं है तो स्वभाव की क्वालिटी कैसी है इसलिए इस अंश से अंशी का व्यक्ति किया जाता है। अंश और अंशी क्वांटिटी में समान है ऐसी बात नहीं है क्वालिटी और पहचान में क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं है क्वालिटी की आवश्यकता है। दोनों को हम कसौटी पर लगाते हैं इसमें पूरे पूरा सामान्य सीखना पड़ता है। बस लगाने में तो बहुत इसके भाव निरंग में फर्क नहीं है उतना ही सीखता है। मैंने ग्राम को लेकर अंश में तो दिखता नहीं फिर भी सारी लकड़ी कैसी है तो पता चल जाता है। तो ये सदरक का तो संकल्प पूरा समझ में आ जाता है तो पूरा बना कैसा है कैसी ये बात है साक्षात शुद्ध पद मैं साक्षात शुद्ध स्वरूप हूँ, उतनी पहचान पूरी पूरी आती है। बिना लक्षण वक्त के पहचान नहीं हो पाई। त्रिकाल में स्वभाव का लक्षण ज्ञान ऐसे सीधा होता है, ऐसे सीधा काम नहीं होता किसी भी उनकी की पहचान हो जाए, क्योंकि वो तो अव्यक्त है, व्यक्त है नहीं, कहाँ से आश्रय होगा, हो ही नहीं सकता। लक्षण को लक्षण की प्रसिद्धि द्वारा लक्ष्य आत्मा का निर्णय करने हेतु ही सारणी आत्मा को ज्ञान मात्र रहा है। आत्मा में जिनको अंत है उनमें ज्ञान मुख्य होने से यह विशेष है। आत्मा का तीनों का लक्षण ज्ञान है, किसी कारण में किसी अन्य लक्षण को भी आत्मा पहचान नहीं जाता, पर बिना लक्षण भी आत्मा से पहचान लक्ष्य से पहचान कभी होती नहीं। जैसे हम इधर देखा मनुष्य इस कमरे में है, खड़ा खड़ा तो हमें देखना है, ऐसा कोई बाहर में करता चलिए तुम लोग भी बेटा बेटे कर बैठे होंगे आप वहाँ जा वहाँ अकेले होंगे तो नहीं वहाँ तो हो गए दोस्तों को दोस्तों काम को आदमी हो सकता है, फिर फलाना है वो उसको कैसे पहचाना है तो पहले आप पहचानने में देख लेना सीधा ही देख लेना उसको पैसी फाइव करना ही पड़ेगा। तो जो सभी मनुष्य होंगे तो अलग तो देख सके तो वो ही जो है दूसरे में उसको विजित है, लेकिन वो लक्ष्मी को नहीं मिले वहाँ तक तो नहीं है ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहे उसको यहाँ पर इतना बड़ा वो है। तो कभी कभी देखता रहेगा वो मिलेगा तो ये आदमी बराबर ये जो पद्धति है बिल्कुल साइंटिफिक है, उसमें कभी प्रकृति में कोई फेर बदल नहीं है। चाहे हलवा आज बनाओ एक हजार साल पहले बनाओ एक हजार साल बाद से बनाओ किसी ढंग से बनेगा, और ये बच्चा देखे थे ना पहले आता थे जिन्हें खोते और फिर सत्तर का दिन का पानी डाले, उसमें कोई बुद्धिमान बाई हो हमारे गुजरात में बाई की बिक्री है, मुझे बाई बिक्री हजारों बाई है दौड़ जाए कहीं ऐसा जहाँ तक दिल को फालतू काम करते पता को पिला देना, पहले पानी डाल दो बाद में भी डालेंगे तीनों मिश्रण में तीनों बिगड़ जाएंगे। तो पद्धति में कोई फर्क है जो आचार्य ने पद्धति कही जो ज्ञानियों ने कही अपने अनुभव से कही और अपने अनुभव से सिद्ध होकर के कही, ऐसा नहीं है तो सफल नहीं हो रहा है। अनुभव सिद्ध बातें सही है और विज्ञान से भी ये बात से जो होती है कि ऐसा ही हो सकता है दूसरे ढंग से हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा का तीनों का लक्षण ज्ञान है और अनंत धर्मों में ज्ञान है वो पराश्रय बुद्धि सहित करके अंतर्मुख होने में वेदन है, वेदन को वेदन से ग्रहण करता है तो अंतर्मुख होना पड़ता है, स्वयं उसका आधार लेने में उसको स्वयं होना पड़ता है, तो उसके अंतरण होने में ज्ञान ही एकमात्र कारण है असंज्ञान। ये इस विषय में जो प्रयोग है उस प्रयोग में जाने से प्रयोग चालू करने से इस विषय में भीतर में से समाधान आता है। विचार ही और विकल्प भी करते रहेंगे तो विकल्प या तर्क करने की संभावना, इसलिए सही रास्ता यह है कि उसके प्रयोग में जाने स्वयं रूप से ही पता चल जाएगा Thank you.